सुहानी आई, नई जिंदगानी लाई ना जा।
सुकून का जजीरा मिल न पाए, वे की करा वे की करा। एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वे की करा वे की करा। राजन दयार बुलया पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा
मुर्शिद मेरा,
तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा
मुर्शिद मेरा।
राजन दयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा, गमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। एक पल को ठहरूं, पल में उड़ जाऊं, मैं ता हूं पगडंडी लबदी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहां मैं साथ मुड़ जाऊं, तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं, वे की करा वे की करा। राजन दयार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा
मुर्शिद मेरा,
तेरा मुकाम गमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा
मुर्शिद मेरा।
Oh, जिस दिन से आशना से दो अजनबी हुए हैं, तन्हाइयों के लम्हे सब मुल्तवी हुए हैं, क्यों आज मैं मोहब्बत फिर एक बार करना चाहूं। ये दिल तो ढूंढता है इनकार के बहाने, लेकिन ये जिस्म कोई पाबंदियां न माने, मिलके तुझे
के पार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा राजन दयार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया परवरदिगार।
हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे सर। सर
आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
बिल्कुल,
और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
जी,
उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
जी,
और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
शब्द चित्र
अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाए हैं। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
जी।
और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र।
जी।
तो शास्त्र
तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।
चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था।
चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना
जाने कहाँ खो गया।
राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए। सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।
जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी
अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आज के फनकार।
विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।
मादा
घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। सभी सुनने वालों को जयप्रकाश मीणा का नमस्कार। पेश है कार्यक्रम छाया गीत। زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گی۔
سلام کر لوں گا، रहने दो छोड़ो ये कहानियां, दीवानेपन की सब निशानियां, लोगों की सारी परेशानियां, इस दिल की है ये मेहरबानियां। हो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है।
दिल तो पागल है,
दिल दीवाना है,
दिल तो पागल है,
दिल दीवाना है।
Thank you. चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा।
जिसके साथ जीने की चाहत बढ़ जाए आखिरी हद तक, तो लगता है वक्त रुक क्यों नहीं जाता दिलों की धड़कनें सुनने के लिए। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद। मेरा कोई अक्स नहीं पहचान तुम हो, जिस सांस से मेरी सांस चले वो सांस तुम हो, ये जान लो तुम मेरी जान हो और जहान भी तुम हो।
क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन का सोना सपनों वाली रात लिए, मेरी दुनिया में तुम आई।
मुझे जाने दो।
जा सकोगी?
मुझे जाना होगा।
जाओ।
छोड़ो ना,
आज की रात तो दिल तोड़ो ना।
दिल बरका, दिल बरका, दिल बरका,
दिल
है सनम प्यार की ये बेखुदी हो।
जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का,
दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का,
all we have is the chips and cheese and beans and everything, exactly what it takes to make something delicious.
That's all this week on Livewire from PRX.
That's tonight at 6 on KJZZ 91.5.
Thanks to Leadership Society members Aaron O'Shea and Mark and Bonnie Howard for supporting KJZZ. They make a difference and you can too. Become a Leadership Society member. More information at leadership.kjzz.org.
This is member-supported KJZZ FM Phoenix and HD, a service of the Maricopa Community Colleges. We're at KJZZ.org and on our free mobile app. Are you
और अशोक अग्रोही, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
जिस देश के पास अपार बौद्धिक वैभव था, भरत मुनि ने अभिनय का जहां तत्व ज्ञान दिया, उसी देश में उपनिषदों ने संवाद का ये मंत्र दिया, सत्य बोलें, कटु न बोलें, दिल न दुखाएं।
वाणी अपनी सरल, सुबोध और दोष रहित भाषा के लिए जानी जाती है। यहाँ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ आंचलिक भाषाओं और बोलियों को भी सम्मान दिया जाता है।
आकाशवाणी के माध्यम से अनेक साहित्यकारों ने आम लोगों के मध्य बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों को संस्कारित किया। सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इलाचंद्र जोशी, हरिवंश राय बच्चन, पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, गिरिजा कुमार माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, कमलेश्वर, राजेंद्र सिंह बेदी, अली सरदार जाफरी, मेलविल डिमेलो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और प्रभाकर माचवे जैसे साहित्यकारों के योगदान को सदैव याद किया जाएगा।
आकाशवाणी में वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर रहे राजीव कुमार शुक्ल हिंदी के जाने माने कवि, नाट्यकर्मी और अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं का उन्हें गहरा ज्ञान है। हिंदी भाषा के मानकीकरण और भाषा चेतना के क्षेत्र में रेडियो प्रसारण के योगदान को रेखांकित करते हुए राजीव कुमार शुक्ल ने बताया,
चूंकि हम वाचिक हिंदी की या वाचिक भाषा की बात कर रहे हैं जो बोली और सुनी जाती है, तो उसके साथ ये भी हुआ कि चूंकि हमारे देश में भाषाओं की बहुत विविधता है, तो जहां उन सभी भाषाओं में प्रचुर और गंभीर और समृद्ध साहित्य है और उनकी बड़ी लंबी परंपरा रही है, लेकिन साथ साथ इसलिए इन सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए इनमें प्रसारणों की पूरी व्यवस्था आकाशवाणी में लगातार बनी रही है और ये प्रसारण होते रहे, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन साथ साथ ये भी हुआ कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से और समाचारों के माध्यम से जो देश के अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग भी हैं उन तक ये ऐसी हिंदी जो व्यवहार में थी, सहज थी, सुबोध थी और उन तक सीधे पहुंचती थी, उसको सुनना और चूंकि सुनने की प्रक्रिया के साथ ही सीखना भी शुरू होता है, तो आप कह सकते हैं कि देश की भाषिक एकता के लिए भी और उसमें हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित कराने में भी आकाशवाणी ने अपनी भूमिका निभाई। और जहां तक भाषिक एकता की बात है तो आकाशवाणी का एक कार्यक्रम होता है सर्वभाषा कवि सम्मेलन, जो 1956 से लगातार होता आ रहा है और जिसमें देश की सभी वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है उनके कवि होते हैं, अपनी अपनी मूल भाषा में कविता पढ़ते हैं, उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके बाद इसे आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है सभी भारतीय भाषाओं की कविताएं और फिर उनका हिंदी अनुवाद, और अन्य केंद्र उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में अनुवादित करके भी प्रसारित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाषाओं में और भाषाओं के साथ साथ और आगे जाएं तो बोलियों में भी आकाशवाणी ने उनकी परंपरा को बनाए रखने और उनको विकसित करके आगे बढ़ाने का काम किया है।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुविख्यात कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा निर्देशक रहे। श्री वाजपेयी स्वयं स्वाधीनता दिवस समारोहों और गणतंत्र दिवस समारोहों का आंखों देखा हाल वर्षों तक सुनाते रहे हैं। वे बताते हैं,
जहाँ तक साहित्य की बात है तो हमने तो उस पहले एक कार्यक्रम जो चलाया था कविता समय नाम से, फिर उसको बदल के उसको और मतलब उसका दायरा बढ़ा दिया, सिर्फ कविता ना करके फिर वो कहानी तक सीमित हो गया, मतलब और साहित्य का सभी आने लगे, तो साहित्य समय उसका नाम है। तो उसमें तो आप आज की तारीख में आप नाम लीजिए किसी बड़े से बड़े साहित्यकार का, वो सारे के सारे लोग आए। और उसमें सुविधा ये थी कि हमने उसके लिए तो मेरठ से और कहां कहां से बिजनौर जहां जहां से, ताकि एक अवसर मिले आम लोगों को कि अपने मनचाहे साहित्यकार के साथ वो संवाद कर सके। वो उस सिलसिले में भी आप जितने भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, जितने मतलब सब वो लीजिए, फिर वो एक कार्यक्रम जब चला जब हमारे वो मंडलोई जी डायरेक्टर जनरल थे, वो शाम की चाय, तो वो तो बना ही इसीलिए था कि जो देश के दिग्गज लोग हैं वो आए उसमें, तो उसमें तो एक से बढ़ के एक वहां भी ऐसे ही ऐसे लोग दिग्गज लोग आए हर तरह के, बल्कि स्टूडियो में करीब करीब 125 लोग तो आ ही जाते स्टूडियो वन में, इतना पूरा पूरा भर जाता था। पर जब वो हमने शाम की चाय की हरिप्रसाद चौरसिया जी का किया तो उसके लिए फिर हमें बाहर ऑडिटोरियम लेना पड़ा, तो ये सिलसिला भी चलता रहा। तो उस समय के तो बड़े से दिग्गज जो भी साहित्यकार, संगीतकार, ये एक सिलसिला निरंतर चलता रहा।
साहित्य की एक प्रमुख विधा है नाटक। मूलतः नाटक दृश्य विधा में आता है। रेडियो नाटक लिखना बहुत ही कठिन काम है। इस कठिनाई का मुख्य कारण ये है कि ये विधा आंखों के बजाय कानों के लिए होती है। इसका मंच श्रोता की कल्पना होती है।
लंबे समय तक रेडियो नाटक सजीव होते रहे।
हवा महल
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बंबई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी।
बहुत सुंदर बैठे हैं। मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। गुड मॉर्निंग सर।
क्या क्या कहा तुमने?
गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर।
यस सर।
घड़ी है तुम्हारे पास?
घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्यों?
अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी।
हाँ घड़ी है ना।
क्या टाइम हुआ?
12:30।
12:30। फिर गुड मॉर्निंग क्यों? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं?
यस सर। गुड आफ्टरनून सर।
थैंक यू। जाओ।
सर सर
अब क्या है?
सर मैं आया हूँ।
आप आएंगे तो मैं देख रहा हूँ, आपकी फोटो उतरवाऊ।
नहीं सर वो बात ये सर। हाँ ये सर ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए।
ये क्या है?
ये सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट।
ज्वाइनिंग रिपोर्ट या जन्मपत्री?
अरे जन्मपत्री नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सर मेरी ड्यूटी लगी है सर।
अच्छा 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 अच्छा, नए नए आए हो?
यस सर।
आज पहली दफा?
हाँ सर।
और पहली दफा ही लेट? हाँ? 2 घंटा से भी ज्यादा।
वो सर वो रास्ते में सर, रास्ते में।
रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो।
हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ। लेकिन सर वो बात ये कि
जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्यों लगा रहे हो?
वो सर बात ये सर वो मैं कह रहा था।
अच्छा अच्छा छोड़ो, वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें।
इस पे? ठीक है सर। हाँ हाँ बैठ गया सर।
हाँ अब ये पूछताछ का दफ्तर है।
यस सर पूछताछ का दफ्तर। हाँ
किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
यस सर।
समझ गए?
समझ गया सर।
और हर यात्री से बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा कर बोलना है।
जी सर।
तो फिर शुरू हो जाओ।
हाँ सर।
क्या बोलूं? जाओ।
हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना।
अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना।
हाँ पूछो।
आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है?
अरे मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आ ही आया हूँ।
खा गए ना कच्चा?
जी
हाँ टेंपर लूज कर दिया
तो?
अभी समझाया था बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे।
अच्छा सर मुस्कुरा कर? हमको मुझे पता नहीं साहब कब खुलती है, मैं तो आ ही आया हूँ।
ये दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूर ये क्या कि दांत दिखाओ?
अच्छा सर
मुंह बंद करो।
हाँ, मुझे पता नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ।
अब क्या हुआ, पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया?
अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है मैं देख लूंगा।
कोई बात, पसीना पहुंचो। अबे मेरा नहीं अपना पसीना पहुंचो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ।
ठीक है साहब।
खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो।
यस सर।
दिक्कत हो तो मेरे पास मेरे कैबिन में आ जाना।
आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही।
रेडियो नाट्य विधा के सुविख्यात नाटककार दानिश इकबाल उन महान नाटककारों को याद करते हैं जिन्होंने इस विधा पर गहनता से काम किया।
अगर सिर्फ नाटकों की बात की जाए तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम मशहूर राइटर कृष्ण